जय राधा माधव कुंज बिहारे,
चन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा रामनवमी महामहोत्सव के दिन 1 अप्रैल 2017 को इस्कॉन नई दिल्ली में दिया गया।
गोपी जाना बाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मंगल नाम प्रकट हुए थे और आज के दिन आपके राजा पांडव गांधी मंदिर का उद्घाटन होता कब? नहीं की इच्छा थी कि दिल्ली में अच्छा केंद्र बने, हम सब भक्तों के प्रयास है। 19 साल पहले इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था और अगले साल स्पेशल सेलिब्रेशन बनी ने कृष्ण बांगला मंदिर का भी उद्घाटन किया था। तो आज ऐसे तो रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन गहराई के साथ वाल्मीकि जी ने किया है, उनकी रामायण की रचना में और श्रीमद् भागवतम में केवल संक्षेप रूप में ही राम जी की लीलाओं का वर्णन है। पहला वर्णन प्राप्त होता है दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में श्री गोस्वामी भगवान के 26 प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन करते हैं और रामचंद्र जी के प्रकट होने का भी वर्णन करते हैं। भगवान प्रकट हुए हैं रामचंद्र जी के रूप में। भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्र में है, वर्णित शास्त्र के आधार पर किसी को अवतार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कोई कहे कि मैं अवतार हूँ और हम स्वीकार कर ले। तो दूसरे स्कंद में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है और फिर आगे जाकर नौवें स्कंद में शिवदेव गोस्वामी 2 अध्यायों में 10 और 11 अध्याय में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्री गोस्वामी ने कहा है कि मैं केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे संतों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर चुके हैं। आप देखते हो कि हमारे जो संत हैं, अगर किसी संत ने किसी विषय की चर्चा की है तो वो इतनी गहराई के साथ चर्चा फिर नहीं करते। जैसे चैतन्य चतुर्गीता में आप अनेक सालों में पढ़ते हो, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कृष्णा का वर्णन कह रहे हैं, क्योंकि वृंदावन दास ने इस विषय की चर्चा कर ली है, इसलिए मैं संक्षेप नहीं करूंगा। क्योंकि इन महान संतों का भाव रहता है कि अगर किसी विषय की चर्चा हो चुकी है तो हमारे इतने गहराई के कारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार आप देखते भागवत में श्री गोस्वामी कह रहे हैं नौवे स्कंध में, क्योंकि वहां अनेक संतों ने रघुनाम की लीला का वर्णन किया है, अनेक संतों ने किया है। और बाबा जी कह रहे थे कि मैं सबसे प्रमाणिक है किसी रचना वाल्मीकि वाल्मीकि जी पहले एक समय बुरा काम करते थे हर प्रकार का बड़ा काम जो काम हो गया बलराम जी ने दिया। नारद मुनि ने मिले थे, नारद मुनि ने उन्हें कहा कि राम का नाम लो, तो वो इतने गहराई के साथ जुड़े थे पाप के कारण कार्यों में कि राम का नाम ही लेने की योग्यता नहीं थी। सोचा इस व्यक्ति का ब्याह से ज्यादा मारने में खूब तो राम जी का मारा मारा बोलो, मारा मारा बोलना आरम्भ किया। वो मारा शब्दों ने सरल से बोलना शुरू कर दिया, मारा 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 कहते 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 कहाँ पहुंच गए। भगवान जी ने दिव्य ज्ञान दिया जिसके द्वारा उन्होंने वाल्मीकि के रामायण की रचना की। भगवतम में केवल दो जाए और भगवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से इन लीलाओं के विषय में सुनेगा उनके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा और ईर्ष्या ईर्ष्या और ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाएगा। शास्त्र में अनेक स्थानों में कहा गया है मन में भावा मत रखो, मेरा चिंतन करो। भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने अनेक नियमों का वर्णन किया है, पर अंत में वो कहते हैं सब नियमों का मूल उद्देश्य यह है कि हम सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। तो कई बार भक्त पूछते हैं भगवान का स्मरण कैसे करें, तो राम जी की लीला का स्मरण करो, अनेक विषय है स्मरण करने के लिए। तो हम आपको नौवें स्कंध के दसवें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें भगवान राम उनके भाइयों के प्रकट होने का वर्णन है। अब मेरे बात दोहराइए ये श्लोक, तस्यापि भगवान एषा साक्षात् ब्रह्ममायो हरि अंशं सेना चतुर्दगा पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति समय तथापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशं सेना चतुर्दागा पुत्रत्वं प्रति सुनि राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति समय। जैसा भी भगवान ईशा साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशं सेना चतुर्दागा कूतर्मं पतितासुरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति संज्ञया नहीं था जब यहाँ भक्त ने अच्छी तरह उच्चारण किया
महाराज दशरथ के भगवान ऐसा वे सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परम ब्रह्म या परम सत्य हरि भगवान अंश अंशेना अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार सदात स्वीकार किया पुत्रत्वं पुत्र बनना प्रार्थिता प्रार्थना किए जाने पर देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण लक्ष्मण भरत 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 शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूप में प्रकट हुए।
अनुवाद
देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए।
तात्पर्य
भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। पूर्व पुरुषों भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विचार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम यद्यपि वे सभी एक ही है किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। पुष्टि हुई है रामादिशुमूर्तिषु कला नियमेण तिष्ठन् भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है तथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने।
ओम ध्यान श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सर्वसत्ता हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने कहा नवस्कार में संक्षेप रूप में भगवत हमें हमारे राम के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है देवताओं की प्रार्थना के उत्तर में तो भगवान जब प्रकट होते हैं उनके पहले उनके देवता प्रार्थना करते हैं
रंगे जी प्रकट हुए, देवगामी पारदा के प्रचार, पवन गामी प्रकट हुए, देवगामी पारदा के प्रचार, चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए, हरिदास भक्तों के प्रसाद। तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्वयं भगवान प्रकट हुए और अपने अंशों के साथ, तो उनके नामों का भी वर्णन किया जा रहा है। वे प्रकट हुए थे किनके पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में। तो भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार, भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपने ही भक्तों को माता पिता कुछ शत्रु बनते हैं, वो भी ऐसे में गहराई से देखा जाए तो भगवान के भक्त हैं। भगवान राम की लीला में आप पढ़ते हो उनका वध हुआ रावण के साथ, तो अगर किसी साधारण व्यक्ति से पूछा जाए रावण का परिचय तो उसको क्या कहेगा, भक्त या अभक्त, असुर था दस से वहां गिनाई से देखा जाए तो भगवान के भक्त है। जब कुमार ने प्रवेश किया भगवान के वैकुंठ धाम में, छह द्वारों से दो हो गए थे बड़ी आसानी के साथ, जब वो सातवें द्वार से निकलने का प्रयास कर रहे थे उन्हें उनके दो द्वार वालों ने रोक दिया। द्वार वालों के नाम क्या थे, द्वार वालों ने कहा नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते। इस तरीके से कुमार को बड़ा क्रोध आया, उन्हें इतना आनंद आ रहा था भगवान के धाम में प्रवेश करते ही कि जब इन द्वारपाल ने रोका उन्हें आगे बढ़ने से, क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो इस भगवान धाम में। महापुरुष ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। पर भगवान सुन रहे थे ये चर्चा को, भगवान आए बड़े प्रेम के साथ, उन्होंने महापुरुष से चर्चा की इतने प्रेम के साथ कि कुमार से उन्हें लगा कि हमने गलती कर दी है, बोल वाले हमें हक नहीं था इन द्वारपालों को श्राप देने के लिए, ये तो भगवान के बड़े प्रिय भक्त है। उन्होंने भगवान से कहा हम ये श्राप वापस लेना चाहते हैं, हमने गलती कर दी है। भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा थी कि तुम मेरी श्राप दो। जय विजय ने जब जय विजय को श्राप दिया, उनका श्राप हम स्वीकार करने को तैयार है, पर हमें एक ही वर हम आपसे मांगना चाहते हैं, जो श्राप दे रहा दीजिए, और ऐसी स्थिति में डालिए कि हम सदा कृष्ण का स्मरण कर सकें। भगवान ने कहा तुम यहां तो सात वर ले, सात जन्म ले सकते हो मेरे भक्त के रूप में, या तीन जन्म ले लो मेरे शत्रु के रूप में, चुनाव तुम्हारा है, सात जन्म ले लो या तीन। तो जय विजय ने शॉर्टकट ले लिया अरे तीन जन्म दे रहा हूं शत्रु के रूप में, क्योंकि इच्छा क्या थी जल्दी से जल्दी लौटा जाए, भगवान के धाम में जाऊं और द्वारपाल की सेवा कर सके। तो भगवान जब उन्होंने कहा कि हम सब वापस लेना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि भगवान जब प्रकट होने पर विवर अपने भक्तों को स्कूल के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे आप लोग ड्रामा करते हो, गाँव में एक भक्त शत्रु बन जाता है, एक मित्र बन जाता है, पर असलियत में सब मित्र है। तो ये सूचना प्राप्त करना आवश्यक है। रावण हालांकि असुर था, पर खेलने से उन्हीं मन में ज्यादा नाम का स्मरण था। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जय विजय ने तीन जन्म प्राप्त किया असुर के रूप में। पहला जन्म था जाने काशी को और शत्रु, दूसरा था रावण और कुंभकर्ण के रूप में, ये हुआ चेतन युग में, और फिर द्वापर युग में कौन शिशुकला और ये तीन अवतार तो प्रसिद्ध अवतार हैं जो प्रकट हुए, जय विजय प्रकट हुए भगवान की लीलाओं को मनोर बनाए गए। तो एक चौथा गुप्त अवतार भी था इनका, कौन सा? हाँ, जगाए मिला। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में कहा जाता है कि वो गुप्त अवतार है, प्रभात बना साधन कहते हैं छन अवतार, छुपे अवतार है भगवान के अवतार, और प्रकट हुए भक्त में। उसी प्रकार जय विजय भगवान ने कहा था, तो भगवान ने कहा सात जन्म ले लो भक्त के रूप में या तीन असुर के रूप में, उन्हें तीन स्वीकार किया, छोड़ा रहता था। उनमें से चौथा भी है, वो है कलयुग के अवध में जो प्रकट हुए किस रूप में, जय विजय के रूप में। तो हमारे मंदिरों में, हमारे मंदिरों में दाबीदेवी मंदिर में तेरह के अवतार की मूर्ति है सीताराम, द्वापर के अवतार की मूर्ति है और कलयुग के अवतार की मूर्ति है, गोविंदा है। हम लोग गोविंदा से शुरू करते हो कलयुग, फिर नर के अवतार, फिर आगे बढ़ते हो द्वापर युग के अवतार के हो, फिर आगे बढ़ते हो सेवा युग के अवतार के नाम करना। तो भगवान राम के अनेक गुण हैं, और भगवान जो प्रकट होते हैं दिव्य लीला प्रकट करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में आपने पढ़ा, ब्राह्मण जी कहते हैं भगवान के अनेक लक्षण हैं जिनमें एक है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान अपने आप को अनेक अंशों के रूप में प्रकट कर सकते हैं, भगवान अपने आप को अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम, अनंत रूपम का मतलब अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भगवान प्रकट हुए थे नृसिंह देव के रूप में, और अद्वैता उनके आत्मा में कोई अंत नहीं, अच्युतम वो कभी गलती नहीं करते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में जन्म कर्म चार में दिव्य देह बना जन्म जो व्यक्ति समझ आए कि मेरा प्रकट होने का प्रकट होना दोनों ही दिव्यों में है, वो व्यक्ति मेरे नाम लौट सकता है। कई कम बुद्धि के व्यक्ति जब आप कृष्ण लीला राम लीला की चर्चा करते हो तो वो सोचते हैं लीला एक कल्पना है, ये तो माइथोलॉजी है। जैसे अंग्रेजों के राज्य के समय कई उनके विद्वानों ने संस्कृत सीखी, ग्रंथों का अनुवाद किया, ये स्थापित किया, ये सभी वैदिक साहित्य की कल्पना है, ये कल्पना नहीं है। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए सेवा की भाव चेतना आवश्यक है, भक्ति मनोभी भक्ति के माध्यम से ही भगवान राम को समझ सकते हो, भक्ति के माध्यम से ही भगवान को समझ सकते हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान राम उनके भाई ये सब प्रकट हुए, ये सब क्या है, विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, मतलब ये भगवान के अवतार है। और भगवान प्रकट क्यों होते हैं पृथ्वी पर, गीता में भगवान क्या कहते हैं, धर्म भगवान प्रकट होते हैं धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। भगवान अपने उदाहरण से हमें शिक्षा देते हैं कि पूरा धर्म की स्थापना होनी चाहिए। तो भगवान राम छोटी आयु से ही बड़े प्रिय थे उनकी पिता को, पिता के और पूरे राज्य के। अयोध्या में महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे और अयोध्या में हर व्यक्ति भगवान राम को आदर देता था, उनकी चेहरे का चिंतन करता था और उनकी शिक्षा का पालन पूरी प्रजा का 100% प्रजा का स्नेह था। किसके प्रति, दर्शन महाराज राजा थे, सबसे बड़े बेटे थे राम। तो भगवान राम कोई राज्य प्राप्त होने वाला था, भगवान राम दशरथ की इच्छा थी कि अभी मैं अपनी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंपूं। तो पूरे अयोध्या में बड़े उत्साह के साथ तैयारी हो रही थी, पूरा अयोध्या सजा हुआ था और अगले दिन भगवान राम को राजगद्दी प्राप्त होने वाली थी और कोई प्रजा तैयार थी। भगवान दशरथ भी सोच रहे थे राम को राजगद्दी में बिठा कर वो जंगल में जाएंगे तपस्या करने के लिए, ये था उनका भाव। पर राजगद्दी में बिठाने से पहले उनकी पत्नी कह गई, जिसको उन्होंने एक समय एक वचन दिया था, एक समय महाराज दशरथ कठिन स्थिति में थे, उनकी नई पत्नियां थी, पति प्रसिद्ध थी कौशल्या घर कई सूर्य सर, तो कगई ने उनकी मदद की थी, उनको बचाया था उनकी जान को। राजा ने कहा था भांगो बेटे क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूं। कगई बड़ी होशियार थी, उसने कहा आज मुझे कुछ नहीं चाहिए पर ठीक समय पर मैं आपसे मांगूंगी, आज कुछ नहीं चाहिए। तो पूरा अयोध्या सजा हुआ था, बैंड बाजे बज रहे थे, लोग खुशी में नाच रहे थे, कल हमारे राम राजगद्दी में बैठेंगे। कल से पहले एक दिन पहले कही गई के हृदय में भावना थी कि मेरा बेटा भारत को नागरिक प्राप्त हुई, उस समय भारत अयोध्या में नहीं थे, तो कहीं ने कहा राजा याद है तुम्हें, तुमने मुझे एक वचन दिया था, जो भी मैं मांगूंगी पूरा करोगे, तुमने दो वचन दे। आपने कहा था हाँ जब मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। तुम्हें यहां से कुछ मांगना चाहती हूं, मुझे दो चीजें मांगी। पहला था राम की वजह है मेरे भारत को राजगति प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरा राम को 14 सालों के लिए वनवास में भेजना। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर रामनवमी के उत्सव पर हवाई में लेक्चर दिया था 1969 में, और प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहा कि कहीं ने कहा 14 सालों के लिए क्यों, क्योंकि उसने सोचा कि अगर थोड़े समय के राम को भार किया जाए तो सेना के साथ लौट आएगा मेरे बेटे को हटाने के लिए, तो 14 सालों के लिए वनवास में जाने के लिए आदेश दिया दिलवाया कि 14 सालों में उनका बेटा ठीक इस्टैब्लिश हो जाए राजा के रूप में। जब महाराज दशरथ ने यह सुना, ये विनती, तो बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी हुए, और उनकी इच्छा नहीं थी अपने वचन का पालन करने के लिए। वचन पर जब भगवान राम को पता लगा कि मेरे पिता ने यह वचन दिया था, तो उन्होंने जिद की कि मुझे नहीं जाना चाहिए। भगवतम में काशी मुनि कहते हैं भगवान शब्दों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जिनमें 6 प्रकार के गुण हो एक साथ। क्या है ये? ईश्वर व्यक्ति में 6 प्रकार के गुण हो एक साथ, उसी को भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इन्हें कि कितने थोड़ा चमत्कार दिखाया और हम भगवान स्वीकार करें। 6 गुण क्या है? ऐश्वर्य मतलब सबसे धनी, अनेक धनी व्यक्ति है पर भगवान सबसे धनी है। वीरेशा मतलब सबसे बलवान, यशाशा सबसे प्रसिद्ध, श्रिया सबसे खूबसूरत, ध्यान सबसे ज्यादा ध्यानी, और वैराग्य सबसे ज्यादा त्यागी। तो भगवान राम ने ये नहीं कहा कि अयोध्या में मेरी तैयारी हो गई है, सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं राजा बनूं, राजगद्दी प्राप्त हो, अब आप मुझे कह रहे हो चले जाओ। नहीं, उन्होंने वैराग्य का गुण प्रकट किया अपने परिवार में। उन्होंने जिद की पिता के साथ अगर बेटे की वादा की ये इच्छा है मैं इसका पालन जरूर करूंगा। और भगवान राम चल पड़े जंगल में जाने के लिए। और भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने क्या कहा, भैया मैं भी चलूंगा। भगवान राम ने कहा नहीं। लक्ष्मण का क्या भाव था, बचपन से लक्ष्मण हमेशा भगवान राम के साथ थे, हमेशा उनके चरणों को देखते रहते थे और हमेशा उनकी सेवा करते रहते थे। इतनी सेवा लक्ष्मण करते थे भगवान राम की कि कई बार सीता को लगता था मेरे को जरूरत ही नहीं है। सारा काम तो लक्ष्मण कर देता है। भगवान राम कुछ इच्छा प्रकट भी नहीं करते थे, लक्ष्मण एकदम तैयार हो जाता था सेवा के लिए। तो सीता को लगा कि मेरी तो जरूरत ही नहीं है, फिर मैं उनके गुरु के पास जाना पड़ा फैसला करने के लिए। लक्ष्मण क्या काम करेगा और सीता क्या करेगी। लक्ष्मण का एकदम ग्यारह भाव था। लक्ष्मण ने कहा मैं भी चलूंगा, और सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। सीता के स्वयंवर में सीता के पिता ने उनके पास एक धनुष था जो इतना भारी था कि 300 आदमी भी बड़ी मुश्किल से उसे उठाते थे। बड़ा भारी धनुष था। और पिता के सीता के पिता ने ये सोचा था कि जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ पाएगा वही व्यक्ति मेरी बेटी को पति के रूप में स्वीकार कर सकेगा। और पूरे विश्व से हजारों लोग आ चुके थे राजकुमार उस धनुष को तोड़ने के लिए, कोई भी तोड़ नहीं पाया कोई भी। तो सीता के पिता सोच रहे थे मेरी बेटी तो शैल कुमारी रहेगी सारी जिंदगी, क्योंकि कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था। रावण भी आया था वो भी असफल था। तो जब भगवान राम गए, भगवान राम ने इतनी सरलता से उन धनुष को तोड़ा जैसे हाथी को गंदे को तोड़ने में कोई परिश्रम होता है, हाथी गंदे को बड़े आसानी से तोड़ लेता है। तो भगवान राम ने बड़े आसानी के साथ उन धनुष को तोड़ दिया और सीता बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी इच्छा थी भगवान राम प्राप्त हो पति के रूप में। तो भगवान जब प्रकट होते हैं दिव्य कार्य करते हैं। इस लीला के विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान जब कृष्ण जब प्रकट हुए थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, भगवान राम प्रकट हुए थे उन्होंने भी अद्भुत लीला प्रकट की थी। जब चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए थे उन्होंने अद्भुत लीला प्रकट की थी। तो हम असली भगवान को स्वीकार करते हैं, नकली भगवान नहीं। आज के भगवान को पूछो आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो, धनुष को तोड़ सकते हो, वो कहेंगे आज नहीं कल तोड़ी। एक समय एक सवाल में था जहां किसी मायावादी सन्यासी ने कहा तुम लोग कहते हो कृष्णा 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 हम सब कृष्णा हैं। मैंने कहा अगर आप ही कृष्णा हो तो आप उनकी किसी लीला की नकल कर दो, उठा लेंगे गोवर्धन को उठा लो, आपको छूट दे देंगे दो हाथों में उठा लो। उन्होंने कहा आज नहीं उठा सकते तो ये मतलब नहीं कल नहीं कर सकते। तो भगवान राम की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। जंगल में रावण ने सीता का हरण किया। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सीता का हरण किया वो माया सीता थी, असली सीता को कोई नहीं छुप पाया। और भगवान राम जब सीता को खोज रहे थे तो उन्हें रास्ते में चिंतायु पक्षी मिले जिनके विंग्स रावण ने काट दिए थे। भगवान राम ढूंढ रहे थे सीता कहाँ है, चिंतायु को पता था कहाँ है, ये रावण उठा के ले हरण करके ले गया। तो भगवान राम ने चिंतायु के अंतिम संस्कार किए, जैसे बेटा माँ के लिए करता है, हाँ जैसे बेटा माँ के लिए क्या माँ के लिए करता है। भगवान राम को जब श्रीलंका जाना था सीता को लाने के लिए, भगवान राम को जब जाना था श्रीलंका तो सागर के तट पर पहुंचे। भगवान राम ने सोचा सागर रास्ता देगा पार जाने के लिए। तीन दिन तक रुके रहे पर सागर ने देखा ही नहीं। फिर भगवान राम ने अपने क्रोधित नेत्रों से देखा पूरा सागर कांपने लगा। और ये कृष्ण पशु थे वो भी कांपने लगे। फिर सागर ने कहा मेरी गलती थी कि मैंने आपको पहले पहचाना नहीं, आप मेरे सिर पर सेतु बनाकर जाओ नसूर के साथ लड़ने के लिए। तो भगवान की सेना में कौन है, केवल बंदर। केवल दो व्यक्तियों को धनुष चलाने की भी योग्यता थी, राम और लक्ष्मण, बाकी सारे बंदर थे। तो जो बंदर थे ये सब थे देवता। अभी मत सोचो ये आपके साधारण बंदर थे, ये थे देवता। देवताओं ने बंदरों का रूप धारण किया था। और ये सबसे प्रसिद्ध थे कौन, हनुमान सुग्रीव। तो भगवान राम को जब सेतु ने सागर ने कहा मेरे ऊपर से पुल बनाओ सेतु बनाओ, भगवान राम की सेना ने पहाड़ों की जो चोटियां होती पीक्स उन्हें तोड़कर फेंका। अक्सर नियम यह है जब आप पत्थर को फेंकते हो सागर में तो पत्थर तैरता है या डूब जाता है, पक्का पत्थर डूब जाता है। तो भगवान राम जब भगवान राम जब पत्थरों को फेंक रहे थे उनकी सेना में यही योग्यता थी पत्थर फेंकने की या पहाड़ों की पीक्स चोटी को फेंकने का। ये डूबे नहीं, ये तैर रहे थे योगी। और प्रभुजी समझाते हैं कि जो अनेक ग्रह हैं प्लैनेट्स अरबों प्लैनेट्स हैं तो वो सब ब्रह्मांड में फ्लोट कर रहे हैं, ऑल फ्लोटिंग इन स्पेस। कभी लोग यहाँ पढ़ते हो कि हवाई घर का एक्सीडेंट हो गया। तो कभी आपने पढ़ा है इतिहास में किसी प्लैनेट का एक्सीडेंट हुआ है। भगवान की इतनी अच्छी योजना है कि लाखों लाखों प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं स्पेस में और कोई भी कभी गिरा नहीं। ये है भगवान। आप मोटर चलाते हो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, साइकिल चलाते हो एक्सीडेंट हो जाता है, हवाई जहाज चलाते हो एक्सीडेंट हो जाता है। तो भगवान एक साथ लाखों प्लैनेट्स को स्पेस में छोड़ा हुआ है और कोई कभी किसका ठोकर नहीं होती है, एक्सीडेंट नहीं होता, ये है भगवान। तो सागर ने भगवान राम को सुविधा दी क्या करने के पुल बनाने के, और भगवान राम की सेना में केवल बंदर थे। तो प्रभुपाद जी इस विषय के तात्पर्य में कहते हैं दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है भौतिक एक है आध्यात्मिक। भगवान राम की सेना में आध्यात्मिक शक्ति थी और रावण की सेना में क्या था, भौतिक शक्ति थी। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध होने से पहले दुर्योधन को इतना दिया था, भगवान ले लो या उनकी सेना ले लो हथियारों के साथ, दुर्योधन ने क्या सोचा, भगवान ने युद्ध में लड़ना नहीं है तो हमारी सेना में लेने का क्या फायदा, हमें तो हथियार चाहिए और कैसे सेनापति चाहिए, किसकी विजय हुई भाई होगी। तो दो प्रकार की शक्तियां हैं, हम जब भक्ति में आते हैं तो कई बार हम भौतिक सुविधाओं का सोचते रहते हैं, पर हमें विश्वास होना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति की अपनी शरण लेंगे तो फिर सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो राम जी की सेना में क्या थी, आध्यात्मिक शक्ति, रावण की सेना में क्या थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे। रावण की तो इच्छा थी कि लिफ्ट बनाई जाए स्वर्ग लोक तक, तो उनकी सेना में थी भौतिक शक्ति। तो भगवान राम सीता को लेकर वापस लौटे कहां, अयोध्या। तो अयोध्या लौट रहे थे, अयोध्या लौटे अपने भाई के साथ हनुमान और सीता देवी के साथ। जो अयोध्या के वासियों को पता लगा भगवान राम लौट रहे हैं बहुत खुश हुए, बड़े खुशी के साथ नाचने लगे गाने लगे। भारत का भाई, भारत का इतना स्नेह था अपने भाई राम के प्रति कि 14 सालों के लिए उन्होंने कुछ खास खाया भी नहीं, राम के चरणों को खड़ा खड़ा राम की पादुका को रखकर शासन किया 14 सालों के लिए, और खाने के लिए क्या बाली जो बस, और पहनने के लिए रेशम के कपड़े नहीं, पेड़ों के पाक अच्छा उसे अपने आप को लगा। तो भारत ने बड़े आनंद के साथ भाई का स्वागत किया और सारे अयोध्या वासी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात भगवान राम का राज्य आरंभ हुआ। भगवान राम के राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं, करते हैं नहीं करते, क्या कारण है, भगवान राम राज्य प्रजा से व्यवहार ऐसे था जैसे बाप का बेटे के साथ बच्चों के साथ हो। सारे जो प्रजा थी उनको अधिकार था किसी समय भी जान सकती थी राधा का दर्शन लेने के लिए। और पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी, किसी प्रकार की समस्या नहीं थी समाज में। सागर भरे हुए थे पानी के साथ, पेड़ बड़े भरे हुए थे फलों के साथ, अन्न की कमी नहीं। और एक खूबी क्या थी, नृत्य के समय भी आप खुद चुन सकते थे। अभी ये छोटा लोगों को आज दी जा रहे तो सारे सब चरण घाट बंद हो जाएंगे। तो सेता युग में भगवान राम के राज्य के समय नृत्य का समय भी व्यक्ति खुद चुन सकते थे, किसी प्रकार की कमी थी। और भगवत में कहा गया है, हालांकि ये घटना बीती थी श्वेत युग में, समाज का वातावरण था जैसे सत्ययुग है, बल्कि भगवान राम पृथ्वी पर थे श्वेत युग में, या दूसरे शब्द में लगभग 20 लाख साल पूर्व श्वेत युग चला था 12 लाख सालों के लिए। और फिर आया कौन सा युग, वो चला कि लगभग 5 लाख से थोड़ा ज्यादा। तो भगवान राम पृथ्वी पर थे 20 लाख साल पूर्व, और आज भी हम उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो राम राज्य के समय भगवत में कहा गया है, हालांकि श्वेत युग था, समाज में जो सुख था, जो वातावरण था, वो सतयुग का था, और पूरी प्रजा अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान राम ने सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और सारी संपत्ति राज्य को बांट दिया ब्राह्मणों में। क्षत्रिय जो है उसका कर्तव्य होता है कि वो अत्यंत दानी हो, ब्राह्मण जो है उन्हें अधिकार है चंदा लेने का। तो उतना ही चंदा जितना की आवश्यक हो जीने के लिए। यदि हम ब्राह्मण है तो हम चंदा भी मांगे जाएंगे और 20 टैक्सी चलाएंगे, उतना ही जितना की आवश्यक हो। भगवान राम ने सारी संपत्ति बांट दी थी ब्राह्मणों को, और जो उनका और सीता देवी का जो उनके पास जो गहने थे वो भी बांट दिए थे। सीता देवी ने केवल एक दसनी अपने लिए रखी, और भगवान राम ने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए, उन्होंने सारे सोना गहना बांट दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, फिर ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हम तुम्हारे राज्य से इतने प्रसन्न हैं, आप हमारी देखभाल इतनी अच्छी तरह करते हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उन्होंने सारा गहना वापस कर दिया किसे, राजा को। आप उम्मीद कर सकते हो आज के वातावरण में सबसे पहले तो राजा अभी संपत्ति बांटे गए थे, और अगर बांटे भी उम्मीद कर सकते हैं ब्राह्मण स्वीकार करके वापस करेंगे। ब्राह्मण ने संपत्ति ली और लौटा दी। भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी उलाह जैसे पाल रहे थे, पूरी प्रजा। अयोध्या में इतना धन था उस समय, अयोध्या की सड़कों को रोज गुलाब के पानी से धोया जाता था, गुलाब के पानी से। आज वॉशिंगटन शहर में भी गुलाब के पानी से सड़कों को नहीं धोते, अयोध्या में गुलाब के पानी के साथ सड़कों को धोया जाता था। और हाथी द्वारा गुलाब का पानी से सड़कों को धोया जा रहा था। तो हाथी है
उनमें योग्यता है जल को पेट में स्टोर करने का, और फिर जैसे शावर हो जाए ना शावर के पानी को फेंकने का, पर शावर में मना नहीं कर तो हाथी दो सड़कों में साफ कर देते हैं। भगवान राम इतने चिंतित थे प्रजा के वृक्षों के लिए, खुद देखते थे कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। तो प्रजा ने जब देखा कि भगवान राम इतनी चिंता कर रहे हैं वृक्षों के लिए, तो वो राम जी भी और भी शर्मिंदा हो गए। भगवान राम के समय राज्य में कोई कष्ट नहीं था। एक व्यक्ति था जिसके बेटा का देहांत हो गया था, तो व्यक्ति भगवान राम के पास आया और कहने लगा ये असल ये कैसे कैसे हुआ, पिता के जीते हुए बेटे का देहांत हो गया। लोग ये सुखी थे कि ऐसी घटना बहुत कम होती थी। एक ब्राह्मण था जो कि केवल भगवान का दर्शन देकर भोजन खाता था, तो एक जब भगवान राम अयोध्या के बाहर गए थे, तो भगवान राम जब लौटे तो लक्ष्मण ने कहा ये ब्राह्मण हमेशा आपके आपके आपका दर्शन लेकर भोजन कर रहा है, क्योंकि अब जो हमसे बेकार थे नहीं रहे ब्राह्मण भूखा है जो हमसे थे। भगवान राम ने अपनी एक मूर्ति जो कि अलमारी में रखी थी उन्हें निकाल कर इस ब्राह्मण को दे दिया। भगवान राम ने कहा मेरे में और इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं, और इस ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की। ये मूर्ति आज भी प्राप्त है दक्षिण भारत में कोई मंदिर है जहाँ मूर्ति का दर्शन आज ले सकते हो। भगवान के आचर विचार में कोई अंतर नहीं, भगवान प्रकट होते हैं क्या उनके आचर विचार के रूप में, आपके दादा पर मंदिर में सीधा लक्ष्मण भगवान की मूर्ति है। तो भगवान राम मेरा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम भगवान है। जब हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं श्री राम और कृष्ण दोनों के नाम लिखे जाते हैं, और भगवान राम भक्तों के शुभ शुभ हैं। तो ब्रह्मा जी भगवत में कहते हैं कि जो सुख भगवान राम राज्य के समय प्राप्त हुआ था वो वातावरण आज भी आप पैदा कर सकते हो अगर आप क्या करो महामंत्र को उच्चारण करो। खरे दोते ने राज नाते महामना कीर्तन ने कृष्ण से मुक्त समय सर्वे। इस कलयुग में दोष ही दोष है, अनेक को नए इस कलयुग में क्या है तो अगर हमें असली राम राज्य चाहिए, अगर हमें असली सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये महामंत्र का उच्चारण। यही सीताराम प्रकट हुए राधा कृष्ण के रूप में, जब भगवान राम जन्म थे तपस्या कर रहे थे, अनेक संत ने मिले थे जिनकी इच्छा थी मधुर भाव में भगवान राम की सेवा की जाए। यही संत जो मिले थे भगवान राम को तब जंगल में थे, यही संत प्रकट हुए गोपियों के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, गोपी में प्रकट हुए भगवान की लीलाओं को और मधुर बनाने गए। तो पूज्य भगवान राम जन्म गए, बाबा जन्म में जो जन्म गए, जो बंधनों की सीमा थी, ये बंधन को मंदिर देख जाते भगवान के भक्त थे जिन्हें सेवा समूह मिला था, तो मानव चाहते थे भक्तों की सेवा की जाए, उन्होंने भक्त उन बंधनों से सेवा की। तो रावण जो था उसके 10 सिर थे, और रावण का क्या है जो भी केवल दूसरों को बुलाता है। तो रावण का व्यवहार था असुर का, फिर रावण जी मत के पश्चात रावण के भाई को राजे दिया श्रीराम का। तो रावण जो है असुर गहराई से लगा जाए तो राम के भक्त से गाय बने रावण। तो हमें आज के शुभ दिन पर क्या करना चाहिए, हमें राम से प्रार्थना करनी चाहिए क्या, हमें शुभ भक्ति प्राप्त हो, हमें उनके प्रिय पद बने और आपके अन्नपद सती मंडल में सीताराम लखनऊ के बड़े सुंदर मिला है। रावण कृष्ण में कोई अंतर नहीं, जब हम महामंदिर जाप करते हैं कृष्ण का नाम ले रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं, और भगवान राम की अद्भुत लीलाए हैं, भगवत के बाद संक्षेप रूप में इनकी चर्चा की जाती है। और प्रभु कहते हैं महामंत्र के उच्चारण से राम और कृष्ण दोनों को प्रसन्न कर सकते हो, तो हमें भगवान राम की शरण लेनी चाहिए। और उनकी शरण कैसे देखे कलयुगा में उच्चारण किया, यही लक्ष्मण राम जी के साथ थे, सिर्फ छोटे भाई बने थे ना, छोटे भाई बने थे, उन्हें कई बार बड़े भाई ने डांट भी खानी पड़ी थी, तो उन्होंने निर्णय कर लिया अगले जन्म में मैं बड़ा भाई बनूंगा, उन्हें डांट भी खानी पड़ेगी। तो फिर अगले जन्म में वही लक्ष्मण प्रकट हुए, और फिर जब हमारे गुप्त और साथ प्रकट हुए प्रकट हुए हनुमान जी नंदा के रूप में, तो यही सीताराम प्रकट हुए राधा कृष्ण के रूप में, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चेतन बाप को नित्यानंदा के रूप में, श्री कृष्ण चेतन या राधा कृष्ण आया, राधा कृष्ण प्रकट हुए चेतन बाप के रूप में, आप चेतन बाप दयाल और उनकी शिक्षा का पालन करोगे, राम जी की भी सेवा कर पाओगे। सीताराम हनुमान की हरे कृष्ण।